हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवतम वर्ग में सबका स्वागत है। तो आज रविवार के दिन एक्चुअली एक वरिष्ठ भक्त का टर्न था, लेकिन वो कुछ सेवा में बिजी है, इसलिए ये सेवा मुझे मिली है। तो हम लोग अगले आधा पौन घंटा इस श्लोक पर चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, बलि महाराज से वामन देव तीन पग जमीन मांगते हैं और दो ही पग में सब कुछ ले लेते हैं और फिर उनको कहते हैं कि अभी मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं अपना। तो बलि महाराज बहुत ही कहते हैं कि मेरा शब्द, मैंने कहा आपको तीन पग दूंगा, तो कहते हैं कि भगवान मैं अपना वचन झूठा नहीं होने दूंगा, इसलिए आप क्या कीजिए, ये जो तीसरा पैर है मेरे सिर पे रखिए। तो ये अध्याय की शुरुआत में बलि महाराज फिर भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं और अपने पितामह प्रहलाद महाराज के बारे में भी बोलते हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज आपके शुद्ध भक्त थे और कैसे आपने उनके ऊपर कृपा की। और ये चर्चा होने के बाद वहां पर प्रहलाद महाराज स्वयं प्रकट होते हैं और प्रकट होके फिर बलि महाराज उनको नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद प्रहलाद महाराज देखते हैं कि वहां पे भगवान है, तो तुरंत वो भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। तो कल का जो श्लोक था और आज का श्लोक, ये दो श्लोक प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो आज के श्लोक में जैसा लिखा है कि भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की को खोजना भूल जाता है। तो इसके संबंध में अभी एक पिछले महीने ही परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक बहुत सुंदर लेक्चर बिरला हाउस में हुआ फरवरी में। तो महाराज उसमें श्री संप्रदाय के आचार्य की कथा बताते हैं, तो हम लोग वो कथा थोड़ा चर्चा करेंगे। उस कथा में बहुत सुंदर कथा है, बहुत बड़े आचार्य श्री संप्रदाय के। तो ये जो श्री संप्रदाय के आचार्य नाथ मुनि, ये मदुराई में रहते थे और नाथ मुनि बहुत बड़े आचार्य हैं उनके, अभी भी जो उनके लिखित ग्रंथ है वो अभी भी पढ़े जाते हैं। तो नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि रहते हैं और ईश्वर मुनि और उनकी पत्नी, इनकी बड़ी इच्छा होती है कि हमें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो भगवान की नाम की प्रचार सब जगह करे। तो उनकी जब ये इच्छा होती है तो ईश्वर मुनि और उनकी पत्नी दोनों ही तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो अलग अलग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और वृंदावन मथुरा में जाके फिर यमुना और सब देखते हैं और तीर्थ यात्रा से वापस मदुरई आते हैं। और मदुरई में आने के बाद उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके वहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। तो वृंदावन में जब यमुना से वो इतने प्रेरित होते हैं कि वो अपने पुत्र का नाम यमुना रखते हैं। तो फिर यमुना थोड़ा जब बहुत ही छोटा होता है उसी वक्त उसके पिता का देहांत हो जाता है ईश्वर मुनि का, और फिर उनको एक गुरुकुल में भेजा जाता है जहाँ पे वो अपने गुरु के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। और उसी जगह एक राजा जो होता है बहुत पंड्या देश जो होते हैं, उस देश के जो राजा रहते हैं उनके वहाँ एक बहुत बड़ा विद्वान होता है। वो विद्वान सबको ओपन चैलेंज करता है कि मेरे साथ कोई भी तर्क वितर्क करके मुझे हरा के दिखाए। हाँ, और वो क्या करता था, सबको एक एक करके बुला के तर्क वितर्क करा के हराता था और जो उससे हार जाता था वो उसको एक हर महीने कुछ तो एक टैक्स करके उसको देना पड़ता था। और राजा कभी भी उसको आशीर्वाद था कि कोई बात नहीं, तुम इतने विद्वान हो, हाँ तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता मेरे राज्य में। तो जो यमुना के गुरु रहते हैं भास्काचार्य, तो वो भी इससे हार जाते हैं और उनको भी पैसे देना होता है लेकिन वो दे नहीं पाते क्योंकि वो काफी गरीब होते हैं। तो एक बार जब वो बाहर गए होते हैं तो ये जो ये विद्वान रहते हैं इसके शिष्य आते हैं उनके घर पे और कहते हैं कि हमारे गुरु का जो टैक्स बाकी है वो तुरंत वापस करो, मतलब हमको चाहिए। तो ये कहते हैं किस चीज का टैक्स, तो फिर वो बताते हैं कि हमारे गुरु बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने आपके गुरु को और सारे ही विद्वान दूसरे विद्वानों को हरा दिया है, हाँ, तो इसलिए हम टैक्स लेना चाहते हैं। तो यमुना कहते हैं कि मैं आपके जो गुरु हैं वो उनसे मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन जो आप शिष्य हो, आप में जो इतना घमंड है, ये देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आपके गुरु कैसे होंगे। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं आपके गुरु के साथ तर्क वितर्क करूँगा करके। तो वो शिष्य अवाक रह जाते हैं कि ये 16 साल का बच्चा ये हमारे गुरु को ललकार रहा है। तो वापस आके फिर वो राजा को समाचार मिलता है कि ऐसा एक लड़का है 16 साल का, वो ये विद्वान को ललकार रहा है। तो राजा कहते हैं ठीक है, उसको लेके आओ। तो यमुना कहते हैं कि देखो, मैं इतने बड़े विद्वान के साथ तर्क वितर्क करूंगा, ऐसे ही नहीं आऊंगा, आप मेरे लिए एक पालकी भेजो और पूरा मतलब पालकी के साथ मेरे को लेके आओ। तो फिर राजा कहते हैं ठीक है, और फिर वो उनको पालकी में बैठा कर यमुना को लेके आते हैं यहाँ पे। और फिर जब वो विद्वान देखता है कि अरे ये 16 साल का लड़का है, तो वो बोलता है आला बंदर, मतलब ये आया मुझे जीतने के लिए, ऐसा मजाक उड़ाता है। लेकिन जब रानी देखती है उसको, तो उसको बहुत ही लगता है कि ये बालक पक्का इस विद्वान को हरा देगा, और वो राजा को कहती है कि ये बालक आपके ये बड़े विद्वान को हरा देगा। तो राजा हंसने लगता है, कहता है रुको 2 मिनट, थोड़ी देर रुको, देखो ये विद्वान कैसे इसको पूरी तरीके से परास्त कर देगा। तो रानी कहती है अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना रानी पद छोड़ के आपके दासियों की दासी बनने के लिए तैयार हूं। तो अभी राजा का टर्न था, राजा बोलता है अच्छा ऐसा है, और मैं भी कहता हूं कि अगर ये लड़का जीत जाता है तो मैं अपना आधा राज्य उसको दे दूंगा। तो कहते हैं ठीक है, और फिर तर्क वितर्क चालू होता है, और वो विद्वान राजा को ये यमुना को बहुत सारे प्रश्न पूछता है, और जैसे जैसे प्रश्न पूछते जाते हैं यमुना उसका उत्तर देते रहते हैं। और फिर यमुना पूछते हैं कि आप मुझे बहुत ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं क्या मैं छोटा हूं उम्र में इसलिए क्या, आप थोड़ा मेन मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। तो फिर वो विद्वान कहता है अच्छा तुमको इतना वो है तो तुम मुझे पूछो और मैं जवाब दूंगा। तो फिर यमुना कहते हैं मेरे को सिर्फ आपसे 3 तर्क करने हैं, आपको ये 3 तर्क जो है अगर आप जीत जाते हो उसमें तो आप जीत गए। तो कहते हैं बोलो। तो पहला आपको ये साबित करना है कि आपकी माँ पुत्रहीन है। तो वो विद्वान सोचता है ऐसे कैसे मैं अपनी माँ का पुत्र यहाँ पे खड़ा हूं और ये बोल रहा है कि मेरी माँ पुत्रहीन है, ऐसे कैसे। तो वो फिर नहीं, उसको बोलता कोई बात नहीं आप दूसरा प्रश्न। तो अभी आपको ये साबित करना है कि ये जो राजा है यहाँ पे ये धार्मिक नहीं है, बहुत पापी है। तो कहते कैसे, अगर ऐसे करूंगा तो ये राजा मुझे अभी मार देगा। तो बोलते नहीं ये भी मतलब बोलते कोई बात नहीं, मैं तीसरा प्रश्न बोलता हूं, अगर वो आपने कर दिया तो भी आप जीत गए। तो बोलते तीसरा ये है कि आपको साबित करना है कि रानी जो है ये पतिव्रता या एक पतिव्रता नहीं है। तो फिर ये बोलता है राजा से ज्यादा रानी को अगर कुछ बोला तो पक्का आज तो मैं गया। तो एकदम वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है ये क्या मजाक है, तुम यहाँ पे शास्त्र पे तर्क वितर्क करने आए हो और ये तुम मजाक कर रहे हो, हाँ ऐसा साबित नहीं हो सकता कभी भी। तो बहुत बड़ा वहां पे हंगामा हो जाता है। और फिर कहते हैं कि ठीक है अभी तुम साबित करके बताओ, यमुना को बोलते, और अगर तुम नहीं साबित कर पाए तो तुम्हें तुरंत मार दिया जाएगा। तो यमुना कहते हैं ठीक है मैं साबित करता हूं। तो फिर वो पूरा शास्त्र के हिसाब से बताते हैं कि मनु संहिता में लिखा हुआ है कि जो जिसको एक ही पुत्र है उसको पुत्रहीन ही माना जाना चाहिए, हाँ, तो पूरा शास्त्र से वो रेफरेंस देके प्रूव करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आप अपनी माता के अकेले पुत्र हो इसलिए शास्त्र हिसाब के हिसाब से आपकी माता पुत्रहीन ही है। तो बोलता है ठीक है, अभी राजा धार्मिक नहीं है या पापी है ये कैसे आप साबित करोगे? तो कहते हैं शास्त्र के हिसाब से हमारे जो राजा है ये तो बहुत ही धार्मिक है और बहुत ही पुण्यशाली है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से जो भी नागरिक राज्य में रहते हैं वो जो भी पाप करते हैं उसका 1/6 जो है वो राजा को जाता है। तो क्योंकि ये कलयुग है, बहुत सारे लोग बहुत पाप कर रहे हैं और उसके पाप का 1/6 राजा को मिलता है, इसलिए राजा भले ही धार्मिक और पुण्यवान हो लेकिन ये जो नागरिकों के पाप के वजह से वो धार्मिक और पुण्यवान नहीं है। तो सब लोग देखते रहते हैं कि अच्छा अभी तीसरा जो है ये कैसे करोगे कि रानी एक पतिव्रता नहीं है करके। तो कहते हैं वो बता दे कि शास्त्र के हिसाब से जो राजा होता है उसके शरीर में अलग अलग देवताओं का वास होता है। तो राजा में बहुत सारे देवताओं का वास है, तो जब रानी ने राजा से शादी की है तो वो एक्चुअली उसके जो राजा के शरीर में जो देवता है उनसे भी शादी की है। तो रानी एक पतिव्रता नहीं है, जो कि हमारी रानी बहुत ही पतिव्रता है, बहुत ही चेस्ट है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से ये प्रूव हो सकता है। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि तर्क वितर्क करके आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिर सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि कितना ये 16 साल का बच्चा इतना सुंदर इसने इस विद्वान को हरा दिया, और फिर राजा खुश होकर उसको अपना आधा राज्य दे देते हैं। फिर जब उनको आधा राज्य मिल जाता है तो जो अड़ोस पड़ोस वाले राजा होते हैं वो सोचते हैं कि अभी ये तो इनको कुछ आता नहीं, 16 साल के बच्चे हैं तो इनको हम लोग इनका राजा राज्य हड़प कर लेंगे। तब उनको थोड़ा गुप्तचरों से पता चलता है कि अरे ऐसा प्लानिंग चल रहा है, तो ये खुद ही क्या करते हैं अपने जो मंत्री और इनको लेके वो जो दूसरे राज्य है उसके ऊपर आक्रमण करके ऐसे जो राज्य थे उनको वो कैप्चर करना चालू करते हैं और ये बहुत बड़े राजा बन जाते हैं यमुना। लेकिन उनके जो दादा पितामह रहते हैं नाथ मुनि, उनको बड़ा दुख हो रहा होता है कि अरे मेरा पुत्र मतलब ये कहाँ फंस गया इतना बड़ा राजा बन गया, इसको तो ये हमारे परंपरा में एक आचार्य होना चाहिए था। तो उनको बहुत दुख हो रहा होता है, तो उनके जो शिष्य होते हैं राम मिश्रा, वो अपने शिष्य को कहते हैं कि आप कुछ भी करके ये मेरे जो पोते हैं रेमुना इनको वापस यहाँ पे भक्ति में लेकर आओ। तो फिर राम मिश्रा उनको अपना शब्द देते हैं, कहते हैं मैं ऐसा करूंगा, और फिर नाथमुनि देहांत हो जाता है उनका। और फिर राम मिश्रा सोच रहे होते हैं कि अभी इतना बड़ा राजा है इसको कैसे मिला जाए। तो फिर वो एक युक्ति बनाते हैं, वो राजा का जो कुक रहता है उसको जाके एक खास प्रकार की सब्जी देते हैं, वो एक प्रकार की पालक जैसी सब्जी होती है वो देते हैं जो राजा को बहुत पसंद होती है, और वो हर दिन आके वो सब्जी वहां पे देते हैं, और वो कुक जो होता है खाना बनाने वाला वो राजा के लिए वो सब्जी बना के राजा को परोसता है। और कुछ दिनों के बाद वो एक दिन नहीं आते, तो फिर राजा बोलता है कि रोज तुम ये सब्जी मुझे दे रहे हो लेकिन आज क्यों नहीं दिया? तो फिर वो खाना बनाने वाला बोलता है कि एक ब्राह्मण आता है रोज और दे के जाता है लेकिन आज आया नहीं। तो बोलता है वो ब्राह्मण का नाम क्या है, कहाँ से आता है? तो बोले कुछ नहीं पता, बस आता है दे के चला जाता है। तो राजा थोड़ा उत्सुक हो जाता है और कहता है कि अगली बार जब आए तो उसको मुझसे मिलवाना। तो फिर दूसरे दिन फिर वापस ये राम मिश्रा आते हैं वो सब्जी लेकर, तो कहते हैं कि आपको महाराज मिलना चाहते हैं। तो फिर उनकी राजा से मुलाकात करवा देते हैं। तो राम मिश्रा कहते हैं कि मैं एक्चुअली आपके जो पितामह हैं नाथ मुनि उनका शिष्य हूं, और उन्होंने देहांत के वक्त आपके लिए एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ा है। तो ये जो राजा रहते हैं कहते हैं हाँ क्या बहुत बड़ा खजाना, मुझे बहुत जरूरत है अभी तो खजाने की, क्योंकि दूसरे राज्यों को जीतना है। तो तुरंत वो खजाना चलो मैं सैनिकों को लेके जाता हूँ, लेके चलते हैं और लेके आएंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं आपको अकेले मेरे साथ आना पड़ेगा। तो राजा कहता है ठीक है। फिर वो राम मिश्रा के साथ वहां से खजाना लेने चले जाते हैं। तो रास्ते में जब थोड़ा विश्राम हो रहा होता है तो राम मिश्रा भगवद गीता का पठन चालू करते हैं और जो यमुना है जो राजा वो सुन रहे होते हैं। और जैसे जैसे भगवद गीता का पठन चालू होता है वैसे वैसे उनका शुद्धिकरण, और जब 12वां अध्याय होता है तो उनको बहुत मतलब सब अपना याद आ रहा होता है कि अरे मैं कहाँ फंस गया। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, मुझे खजाना नहीं चाहिए, आप एक काम करो भगवद गीता मुझे पूरा समझाओ। तो फिर वहां पे एक ही जगह पे 7 दिन रहकर वो पूरी भगवद गीता पे चर्चा होती है और कहते हैं कि आपके जो पितामह ने जो खजाना था वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और फिर उनको लेके जाते हैं कहाँ, रंगनाथ जी के मंदिर में, और वहां पे उनके दर्शन करवाते हैं। और जैसे ही उनके दर्शन करते हैं रंगनाथ जी के, तुरंत उनमें पूरा वैराग्य आ जाता है, सब कुछ छोड़ के वो सन्यास ले लेते हैं। और फिर आगे उनका नाम यमुना मुनि हो जाता है और फिर वो श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य यमुनाचार्य के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, जो कि आगे रामानुजाचार्य के भी गुरु होते हैं, जो कि रामानुजाचार्य उनसे मिलते नहीं है बट उनको अपने गुरु के रूप में मानते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि यमुनाचार्य जो इतने बड़े श्री संप्रदाय के आचार्य थे, जो जिनको जिनका जन्म उनके माता पिता ने इतनी प्रार्थना करने के बाद भगवान का नाम प्रचार करने के लिए ही हुआ था, उनको भी जब राज्य मिलता है तो कैसे भ्रमित हो जाता है। तो आज के श्लोक में यही दिया है, लेकिन ये भ्रमित अवस्था से बाहर निकालने के लिए भक्तों की जरूरत है। जैसे भक्त जब कोशिश करते हैं आके भगवद गीता सुनाते, भगवान का दर्शन करते हैं, तब फिर हम वापस उस भ्रमित अवस्था से बाहर आ सकते हैं। तो ऐसी एक कथा रामायण में भी आती है ना, जैसे भगवान राम और सुग्रीव की जब मित्रता होती है और भगवान राम वाली का वध कर देते हैं, तब सुग्रीव को वचन होता है कि मैं आपको सीता की खोज में मदद करूंगा, लेकिन बारिश के वजह से जब वो रुकते हैं तो सुग्रीव पूरी तरीके से भूल जाता है और पूरा भ्रमित होके अपने ऐश्वर्य भोगने में लग जाता है। और फिर भगवान को लक्ष्मण जी को भेजते हैं, जो गुरु के प्रतिनिधि गुरु तत्व है, वो जाके लक्ष्मण जी सुग्रीव को याद दिलाते हैं कि तुम्हारी भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, तुमने क्या वचन दिया था। और फिर वो वचन को पूरा करने के लिए सुग्रीव वापस आके फिर सीता मैया की खोज के लिए हनुमान जी सबको अंगद सबको भेजते हैं। तो ये भी शास्त्र से और एक कथा यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसलिए ये जो ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य, ये हमको भ्रमित करती है। इसलिए कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती है कि जन्मैश्वर्य श्रुति श्रीबीर एदमान मदपुमान नैवार्त्य अभिधातुम वही त्वम अकिंचन गोचर। तो कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। जो सम्मानित कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठा भाव से नहीं पहुंच पाता। तो ये कुंती महारानी प्रार्थना करती है और इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे सारे भौतिकवादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है, लेकिन परिणाम यह होता है कि इस समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदांध हो जाता है, मद में अंधा हो जाता है बेसिकली। तो ये भौतिक ऐश्वर्य, ये जो है जन्म ऐश्वर्य श्रुति, इसमें जो वेल्थ है, जो धन है, ये सबसे ज्यादा मद है। इसमें आदमी भूल जाता है कि एक दिन वो ये संसार छोड़ के जाने वाला है और पूरी तरह ऐश्वर्य भोग में लग जाता है। तो एक सुंदर कथा ग्रंथराज करके जो एक आर्टिकल्स आते हैं कालचक्र कृष्ण प्रभु महाविष्णु गोस्वामी महाराज के शिष्य जो है, तो उनके ग्रंथराज में एक बहुत सुंदर आर्टिकल आया था कि एक अमृत नाम का एक व्यक्ति रहता है, तो उसको बहुत भोग लेना होता है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा डर लगता है कि कभी मेरा मृत्यु आ जाएगा, तो मृत्यु से बहुत डर लगता है। तो कहता है अभी क्या करूं ये मृत्यु से डर भगाने के लिए, तो कहता है ठीक है अभी मैं तपस्या करूंगा, लेकिन किसकी, तो यमराज की तपस्या करते हैं। तो यमराज की तपस्या करके वो यमराज को खुश कर देते हैं, तो यमराज आते हैं उनके सामने और कहते हैं कि मैं वैसे सबको दिखता नहीं हूं, लेकिन तुम इतना प्रार्थना कर रहे थे तो तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं, बोलो क्या है। तो बोलता है कि मुझे ना ये मौत से बहुत डर लगता है, तो आप क्या करना, जब मेरा आखिरी समय आए उसके पहले आप मेरे को एक लेटर भेजना कि भैया तुम्हारा टाइम आ रहा है तो थोड़ी तैयारी वगैरह कर लो। तो यमराज कहते हैं अच्छा ठीक है, तो मैं आपको एक मैं लेटर भेज दूंगा, और यमराज चले जाते हैं। तो ये जो अमृत रहता है ये बहुत निश्चिंत हो जाता है कि चलो अभी तो कोई, जब यमराज जी का लेटर आएगा, पत्र आएगा, तब देखेंगे, और पूरी तरीके से भोग करने लगता है, ऐश्वर्य के इसमें डूब जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसके बाल सफेद हो जाते हैं, बूढ़ा होता है, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है अभी तक यमराज का कोई पत्र नहीं आया है तो डरने की कोई बात नहीं है। फिर कुछ और सालों के बाद उसके दांत गिरने लगते हैं, तो बोलता है कोई नहीं, मैं तो आराम से ऐश करूंगा क्योंकि अभी तक यमराज जी का पत्र नहीं आया है। कुछ दिनों के बाद उसको ठीक से दिखने नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो कहता है कि कोई नहीं अभी तो बहुत टाइम बाकी है, यमराज जी का पत्र नहीं आया। फिर उसको पैरालिसिस हो जाता है, सब लोग बोलते हैं अरे कितना क्रिटिकल है, लेकिन वो खुश रहता है, बोलता है नहीं नहीं अभी यमराज जी का लेटर नहीं आया। तो एकदम निश्चिंत रहता है और खुश रहता है और भोग में लगा रहता है। फिर एक दिन जब वो बिस्तर पर रहता है तो अचानक यमराज आ जाते हैं, तो घबरा जाता है, बोलता है अरे आप कैसे क्या आ गए, मैंने आपको बोला था कि आप आने के पहले एटलीस्ट एक लेटर तो देना चाहिए ताकि मैं पूरा तैयारी कर लेता। तो यमराज कहते हैं भाई लेटर मैंने तेरे को एक नहीं चार चार लेटर भेजे। तो बोलता है क्या आपने मेरे को चार लेटर भेजे, ये पोस्टमैन ने कुछ तो गड़बड़ किया है, एक भी लेटर मेरे को नहीं पहुंचा। फिर यमराज कहते हैं कि तुमको क्या लग रहा है कि मैं कागज लेके उस पर शाही से पत्र लिख के तुमको भेजूंगा, मैंने तुम्हारे देह को पत्र बनाया और जो समय है उसको पोस्टमैन बना के तुम्हारे पास चार चार पत्र भेजे। पहला पत्र भेजा मैंने जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए, ये मेरा पहला पत्र था कि भैया अभी टाइम हो गया है थोड़ा तैयारी कर लो, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरा पत्र मेरा जब तुम्हारे दांत गिरने लगे, तो ये मेरा दूसरा पत्र था लेकिन तुमने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। मेरा जो तीसरा पत्र था जब तुमको ठीक से दिखने नहीं लगा तब भी तुमने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और चौथा जब तुमको पैरालिसिस का अटैक आया तो वो मेरा फाइनल लेटर था लेकिन तुमने उसको भी ध्यान नहीं दिया और भोग में लगे रहे, तो अभी तुम्हारा समय खत्म हो गया है और तुम अभी चलो यहां से। तो हम देख सकते हैं कि यमराज फिर उसको वहां से लेके जाते हैं। तो यमराज बहुत सारे पत्र भेजते हैं, आजकल यमराज एक कोरोना का पत्र भेजे हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसे बीच बीच में पत्र भेजते रहते हैं। रामदूत प्रभु बहुत अच्छा बोल रहे थे उस दिन, मेरे साथ आ रहे थे कि बोल रहे थे कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये लोग ये जीवन को शाश्वत समझते रहते हैं, जब कोरोना आया है तो लोग थोड़े हिल जाते कि अरे हाँ ये जीवन शाश्वत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वायरस आपको लेके जा सकता है। तो ये जो शाश्वती है ये हटाता है कोरोना। तो ये यमराज का एक लेटर है और एक, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जो अलग अलग हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं उसके हिसाब से हमारी भक्ति की तीव्रता और बढ़नी चाहिए, और हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि और समय कम होते जा रहा है, अभी बाल सफेद हो गए, अभी दांत से ठीक से खाना नहीं हो रहा, आंखों से ठीक से दिख नहीं रहा, तो ऐसे करके भक्ति बढ़ती रहनी चाहिए। तो कुंती महारानी की प्रार्थना में प्रभुपाद उसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि अकिंचन मतलब जिसके पास धन नहीं है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है ये बहुत अच्छा है। धन नहीं है मतलब उसको ज्वर नहीं है, मतलब उसका फीवर लो है। तो जिसके पास जितना ज्यादा ऐश्वर्य है उतना ज्यादा उसका फीवर है, प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं बहुत सुंदर। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि कुपचार से उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाता है, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जितना ज्यादा ऐश्वर्य उतना ज्यादा फीवर ज्वर है हमारे शरीर में। तो आगे जो श्लोक है उसमें भी कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना करती है कि नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो भगवान को कुंती महारानी यहाँ कह रही है कि नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है और वित्त मतलब पैसा धन। तो भगवान को क्या बताया, भगवान को बताया है कि ये जो निर्धन है उनके धन भगवान है। तो इतना सुंदर प्रार्थना है और इसका बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य है। तो हम उसमें से एक दो चार पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव कुछ भी त्याग करता है तो उसको कुछ और चाहिए होता है, तब त्याग करता है। जैसे एक बच्चा खेलना छोड़ के पढ़ाई करता है क्योंकि उसको कुछ अच्छा डिग्री चाहिए होता है। हाँ, एक नौकर अपने मालिक का सेवा करता है क्योंकि उसको सैलरी चाहिए होता है। तो कहते हैं कि भक्त भी भौतिक चीजों को ऐसे ही नहीं त्याग देता है, उसको आध्यात्मिक मिलने वाला होता है तभी वो उसको त्याग करता है। और प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अपने षड गोस्वामी का उदाहरण देते हैं कि कैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो बंगाल में बहुत बड़े मंत्री थे, लेकिन उन्होंने भगवान का आश्रय लेने के लिए अपना मंत्री पद और सारा ऐश्वर्य छोड़ के उन्होंने भगवान का शरण लिया। और फिर उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका भी उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ये बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा ऐश्वर्य छोड़ के फिर भगवान के पास उन्होंने शरण लिया। तो आगे प्रभुपाद बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं कि अकिंचन का अर्थ क्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अकिंचन का अर्थ है निर्धन, यथार्थ जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ ना हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका है, लेकिन वह परम धन का अर्थार्थ भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। तो इतना सुंदर प्रभुपाद यहाँ पे अकिंचन मतलब जो निर्धन है, मतलब एक भक्त उसके पास भौतिक धन नहीं होता, वो किसी को भौतिक चीज नहीं देता। भक्त जब भी किसी से मिलता है तो वो उसको भगवान देने की कोशिश करता है। तो इस प्रभुपाद यहाँ पे इसका उल्लेख करते हैं। फिर आगे और भी तात्पर्य में प्रभुपाद एक लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, भौतिक प्रगति के बारे में प्रभुपाद बहुत सुंदर यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसे भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही, वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अथवा आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक का प्रयोग किया जा सकता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिपस्टिक के बारे में लिख रहे हैं कि कैसे अनवांटेड चीजों को हम जीवन में लेके आते हैं। ऐसी अनेक अनवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की मुख्य आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास दूसरा उदाहरण है जिससे शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है, वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होगी उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। तो ये जो आखिरी लाइन बहुत ही महत्व का है कि हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होगी उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि हम देखते हैं घर में बहुत सारी चीजें होती है तो एक्चुअली हमको लगता है कि क्या एक कोने में पड़ी हुई है, किसका क्या जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कोने की वस्तु है लेकिन हमारा जो मन है वो भी वो ऑक्यूपाई करता है। तो इसलिए जितना हम कम रखेंगे उतना ही हम भक्ति में बहुत अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक कोट में कहते हैं कि इफ वी हैव लव ऑफ गॉड इन अवर लाइफ इट रियली डज नॉट मैटर वेदर वी डोंट हैव एनीथिंग और वेदर वी हैव एवरीथिंग वी विल बी सैटिस्फाइड बिकॉज ऑफ दैट लव। मतलब यदि हमारे जीवन में ईश्वर का प्रेम है, भक्ति है, तो फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास सब कुछ है या हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम पूरी तरीके से जीवन में संतुष्ट रहेंगे। तो आज के श्लोक से यही हम देख सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य ये हमारे भक्ति में एक रोड़ा हो सकता है, एक रुकावट हो सकता है, अगर हम भक्तों के संग में रहकर उस भौतिक ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। वो ऐश्वर्य कुछ सिर्फ धनी नहीं, कोई भी ऐश्वर्य हो सकता है, अच्छा गाना या कुछ भी नाम, फेम, प्रसिद्धि, कुछ भी ऐश्वर्य हो सकता है, अगर वो भगवान के संबंध भगवान की सेवा में नहीं लगी तो वो हमको भक्ति से दूर ले जा सकता है। तो इसलिए भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए और हरदम भक्ति करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय।